99 ईयर्स की एज हो गई, आप दुआ करें अल्लाह से अल्लाह औलाद दे दे, है 99 साल तक औलाद नहीं है। जरा सोचो कौन है खलीलुल्लाह, जिन्होंने अपनी लाइफ स्टेक पर लगा दी थी, आग में कूद गए थे, मगर अल्लाह वालों पर इम्तिहान कैसा, मगर शिकवा नहीं था, अरे अल्लाह मैं तेरा खलील, फिर भी औलाद नहीं मांगी जा रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं, उम्मीद भी नहीं छोड़ी और ना शुक्री भी नहीं है। हजरत इब्राहिम के पास 99 साल तक औलाद नहीं है और अब अल्लाह ने बेटा दिया। अच्छा बेटे के लिए दुआ क्या करते थे, इस्मा या ईल, अरबी में इस्मा कहते हैं सुन ले, ईल इब्रानी जबान का लफ्ज है जिसके माना है परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार सुन ले मुझे औलाद दे, इस्मा या ईल, इस्मा या ईल। जब अल्लाह ने बेटा दिया तो आपने उसका नाम ही इस्माइल रख दिया। हजरत इस्माइल के नाम के पीछे जो लॉजिक उलमा ने बयान की कि ये वो पुकार थी, ये वो इल्तिजा थी, ये वो मिन्नतें थी, ये वो अल्लाह की बारगाह में पुकारना था, आपने बेटे का नाम ही इस्माइल रख दिया। अब जरा ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतनी दुआओं के बाद जो बेटा मिला होगा उससे प्यार का लेवल क्या होगा, उसकी केयरिंग का लेवल क्या होगा। किसी को 10 साल बाद बेटा मिले, पूछो माँ बाप उसके पैर जमीन पर नहीं रहने देते कि यार बड़ी मन्नतों से मिला है, 99 ईयर्स की एज में बेटा मिला है। इम्तिहान देखो, यही बच्चा अब 7 साल का होता है, एक रिवायत के मुताबिक 13 साल का होता है। हजरत इब्राहिम को ख्वाब में कहा जाता है, इब्राहिम इस बच्चे की कुर्बानी करनी है, इस बच्चे को ज़िबह करना है। जरा सोचो तो सही कि बच्चा ज़िबह करना है। हजरत इब्राहिम जब सुबह उठते हैं, 8 जुलहिज्जा का दिन है, आपने ये वक्त सोचने में गुजारा कि ये शैतान की तरफ से है या अल्लाह की तरफ से है, ये जो सोचो विचार है ना, इसको अरबी में कहते तरविया। 8 जुलहिज्जा का दिन ही यौम तरविया पड़ गया, नवी रात फिर ख्वाब आया, इब्राहिम अपने बच्चे को कुर्बान करो। अब आपको यकीन हो गया कि ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है, तो अब आपने पहचान लिया कि ये अल्लाह की तरफ से ख्वाब है। अरबी में अरफा कहते हैं पहचानने को, कि जो 9 जुलहिज्जा को अरफा का दिन कहा जाता है ना, ये हजरत इब्राहिम का उस दिन कंफर्मेशन था, आप समझ गए कि अल्लाह का हुक्म है कुर्बान करना है, और 10 जुलहिज्जा को आपने प्लान कर लिया कि कुर्बान करना है, और इसलिए इसको यौमुन नहर कहा जाता है। तरविया इसलिए कहा जाता है वो दिन सोच विचार में गुजरा, अरफा इसलिए कहा जाता है 9 जुलहिज्जा को कंफर्म हो गया अल्लाह की तरफ से पैगाम है, और 10 जुलहिज्जा को यौमुन नहर इसलिए कहा जाता है कि आपने ज़िबह की गोया तैयारी कर ली, अब अपने बेटे को तैयार करके आप लेकर जा रहे हैं। शैतान को कब गवारा होगा कि इतना बड़ा इम्तिहान और इब्राहिम कामयाब हो जाए। अब शैतान गया बीबी हाजरा के पास, माँ के पास, ऐ बीबी तुम्हें मालूम है तुम्हारे शोहर अब तुम्हारे बेटे को कहां ले जा रहे हैं, कहां ले जा रहे हैं, ज़िबा करने ले जा रहे हैं, क्या कोई बाप भी अपने बेटे को ज़िबा करता है, कहां उनको अल्लाह की तरफ से हुक्म है। सुनो बीबी हाजरा का जवाब, आप फरमाती हैं अगर मेरे रब का हुक्म है तो अच्छी बात है, मैं भी राजी हूं, ज़िबा करवाने के लिए राजी हूं। शैतान आपके बेटे के पास, हजरत इस्माइल के पास आया, ऐ बेटे तुम्हें पता है तुम्हारे वालिद किधर ले जा रहे हैं, कहां ले जा रहे हैं, तुम्हें ज़िबा करने ले जा रहे हैं। हजरत इस्माइल कहते हैं क्या बाप भी कभी बेटे को ज़िबा करता है, कहां तुम्हारे बाबा जान को अल्लाह का हुक्म मिला है। वो बेटा क्या कहता है, अगर रब का हुक्म है तो मैं ज़िबा होने के लिए तैयार। ये कैसा खानदान था। अब शैतान मुख्तलिफ मकामात पर आपके सामने आया, फरिश्तों ने कहा कंकरी मारें, आपने एक जगह 7 कंकरी मारी, थोड़ा आगे जाकर फिर शैतान आया, फरिश्तों ने कहा इधर भी कंकरी मारें, आपने उधर भी कंकरी मारी, तीनों जगह पर आपने शैतान को 7-7 बार कंकरी मारी। और अब उसके बाद हजरत इब्राहिम उस मकाम पर ले गए जहां बेटे को लिटाना है। हजरत इस्माइल को जब लेकर गए, क्या बेटा है, क्या क्या तरबियत है, वो कहते हैं बाबा जान आप मुझे ज़िबा कर रहे हैं ना, एक काम कीजिएगा जरा छुरी को ज्यादा तेज कर लीजिएगा ताकि मुझे कुछ कम तकलीफ हो। अच्छा बाबा जान मुझे रस्सियों से बांध दीजिएगा, कहीं मैं ज्यादा हिलूंगा तो मेरे खून से आपके कपड़े खराब ना हो जाए। अच्छा मेरी ये जो कमीज है ना, ये मेरी माँ को दे दीजिएगा तो मेरी माँ को कुछ तसल्ली हो जाएगी। बाबा जान ज़िबा करते वक्त मुझे उल्टा कर दीजिएगा ताकि मेरे चेहरे पर आपकी नजर पड़ेगी तो आपको भी तकलीफ होगी। अल्लाह अकबर, ऐसा ही हुआ। ये कुर्बानी की दास्तान अपने बच्चों को सुनाओ, घरों में बकरे लेकर जानवर लेकर खेल रहे हैं कूद रहे हैं, इनको बताएं तो सही ये किसकी याद है, ये कितना बड़ा इम्तिहान था। आज इस हिस्ट्री को भुला बैठे। हजरत इब्राहिम ने छुरी तेज की, बच्चे को रस्सी से बांधा, उल्टा लिटा दिया, और सुनो क्या किया उन्होंने, अपना काम कर दिया, उन्होंने छुरी को घुमा दिया, मगर अल्लाह के हुक्म से छुरी ने अपना काम नहीं किया। और अब क्या हुआ, जरा ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो। बेटा नीचे है, बाप ऊपर है, और हाथ में छुरी है, और वो छुरी घुमा दी गई है। اتنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اوپر سے ایک آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے سر اٹھا کر دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ جبریل امین ایک مینڈھا لے کر آ رہے ہیں، اللہ کریم نے جنتی مینڈھا بھیجا۔ اور یہاں پر جن کو تھوڑی سی ہسٹری اسلام کی معلوم ہے، جنہوں نے حضرت آدم کا واقعہ سنا ہوگا، قابیل اور حابیل کے انسیڈنٹ میں جو حابیل نے قربانی کے لیے مینڈھا پیش کیا تھا، علماء کہتے ہیں یہ وہی مینڈھا تھا جو جنت میں تھا، اللہ نے حضرت اسماعیل کے فدیے کے طور پر اس کو بھیجا۔ اچھا جب حضرت ابراہیم نے وہ سنا نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت ابراہیم اب اپنے بیٹے کے گویا اوپر سوار ہیں، آپ نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب جب بیٹا جو نیچے ہے اس نے سنا تو وہ بھی سمجھ گیا کہ امتحان کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ بیٹا کہتا ہے، حضرت اسماعیل کہتے ہیں، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو عید کے دن پڑھتے ہیں، ذرا سوچو اس کی ہسٹری کیا ہے۔ یہ اسٹارٹ کے ورڈز جبریل امین نے ادا کیے ہیں، درمیان کے وقت حضرت ابراہیم نے ادا کیے ہیں، اور آخری جو الفاظ ہیں وہ حضرت اسماعیل کے ادا کیے ہوئے ہیں۔ اب جب بھی یہ تسبیح پڑھنا نا عید کے دنوں میں، تو یاد کرنا اس قربانی کو، یاد کرنا اس واقعے کو، کتنی قبولیت والی یہ تسبیح ہوگی جو اللہ نے ہمیں زبان سے ادا کرنے کو دی۔ آؤ ذرا اس تصور میں ایک بار مل کے اس تسبیح کو پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تسبیح کی اصل حقیقت ہمیں پتا ہونی چاہیے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی، دیٹ واز دا ہسٹری۔ یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی قربانی تھی جو وہ کامیاب ہوئے۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں،